ஓம் நமஹ. ஓம்காரம் விந்து சயக்தம் நித்தம் தியாயந்தி யோகினா காமதம் மோக்ஷம் செய்வ. ஜீவ அஹிம்சா பரமோ தர்மசி. மகானுபாவோ, ஆஜ் அகிஞ்சன்ய தர்ம ஹை. அனந்தானவந்தி குரோத் சோட் தியா, அனந்தானவந்தி மான் சோட் தியா, அனந்தானந்தி மாயா ஔர் அனந்தானவந்தி லோக். இந்த சார் சோட்னே கே பாத் சௌச் போலே தோ சுத்ததா பிரகட் ஹோகி, இஸ்கே பாத் சத்ய பிரகட் ஹோ கியா. சத்ய பிரகட் ஹோனே சே சயம் தாரண கர் லியா, ஔர் சயம் கே பாத் इतने सब होने के बाद उन्होंने कहा कि आकिंचन, अब तो केवल एक आपका अपना आत्मा है और कुछ नहीं, तीन लोक के किसी पदार्थ का नहीं, अपने आत्मा का ही द्रव्य गुण पर्याय से और शाश्वत अखंड निरंश, न वह किसी बद्ध है किसी पदार्थ से, इस तरह से एक शुद्ध नहीं की अपेक्षा को लेकर और इस शुद्ध आत्मा का ही केवल एको में शाश्वत आत्मा, मेरा एक आत्मा ही शाश्वत है, इसके बिना और तीन लोक में कोई भी पदार्थ मेरे साथ सम्मी प्रमाण प्रमाण भी कोई चीज नहीं, देखिए आप सामान्य रूप से सब संयोग है, पति पत्नी शिष्य गुरु राजा प्रजा जितने भी नाना अध्यापक छात्र जितने भी चीजें हैं, ये शरीर का भी अनंत बार अनंत संयोग हो गया, उन्होंने कहा कि सब छोड़ो, फिर भी एक तिल तो मात्र जो परिग्रह है वो भी दुखदायी होता है मैरम का, तो आप याद रखिए कि संसार के परिग्रह में रात रंजन डूबे हुए व्यक्ति कितना दुखी हो, मैं आपको एक छोटे से रूपक पहले बता दूं, पहले तो अनंतानंदी क्रोध छोड़ना बहुत आवश्यक है, ये भूमिका है उसकी, कई क्षमा मार्दव आर्जो आते हैं वो क्रोध कितना खतरनाक कितने ये मैं इसको समझाने के पहले कुछ भूमिका बता दूं कि बोलते धोबी रोज कपड़े धोता था और उसको एक दिन आने में देरी हुई तो एक वितराल साधु आके कोई वहां पर नगलधारी वहां तपस्या में उसी पत्थर पर बैठ गए, उनको कपड़े धोने में देरी हो गई इसलिए उसने उठा के और इधर दूसरे पेड़ के नीचे रख दिया, देव को ये हो गया कि वे उत्सर्ग आ गया उदित ज्ञान से, तो फौरन निवारण के लिए वो वहां तुरंत चल पड़ा, इतने में उन दोनों के आपस में लड़ाई हो गई, क्या तुमने कैसे मुझे यहां से हटा दिया, तो इस लड़ाई के बीच में धोबी ने एक छोटे से धोती पहनी हुई थी लू वो भी छूट गई तो दोनों नग्न हो गए, तो देव ने उत्सर्ग निवारण करने के लिए आया पर उसको ये समझ में नहीं आया बहरंग में तो देव नग्न अंतरंगे कथा युक्त है, ये साधु है ये साधु है ये समझ में नहीं आया उसको, इसलिए वो वापस चला गया, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि बहरंग के साथ अंतरंग परिग्रवी त्याग आवश्यक है, अंतरंग इस मिथ्यात को नहीं छोड़े बिना बहिरंग का कोई कीमत हमारे श्रमण संस्कृति तीर्थन करके धर्म में विद्राग वाणी में कोई भी महत्व नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं, एक ही नहीं है ये धर्म, सापेक्ष हर चीजों का कथन वो सापेक्ष करते हैं, ये भाव भाव में उन्होंने कहा कि या बहिरंग छोड़ना आवश्यक है पर उन्होंने कहा कि अंतरंग के अंदर नहीं छोड़ा तो बहिरंग छोड़ा हुआ भी व्यर्थ है, सशर्त बात कही वहां बिना शर्त की कोई बात ही शास्त्रों में वर्णन नहीं है, इसी तरह से दूसरी बात लोभ कशा तिलतुष्मात्र परिग्रह बड़ा दुखदाई है, जब छोटे से इतने परिग्रह दुखदाई है तो बड़े बड़े परिग्रहों का तो आप ही अनुभव करते, हम तो कुछ जानते नहीं उसके बारे में, एक गुरु शिष्य थे और दोनों चले यात्रा करते थे एक गांव से दूसरे गांव, घर बार छोड़ दिया तो प्रश्न वो महात्मा जी के हाथ में एक लाठी थी। हर गांव के बाहर जाके ठहरने के बाद शिष्य से पूछते भी ये गांव में जाओ और ये पूछ के आओ ना कोई डर तो नहीं है। तो बोले महाराज हमारे पास कोई चीज ही नहीं है, डर की बात क्यों करते आप हर गांव में, अरे पूछ के तो आओ। बोल दे कोई डर नहीं ऐसे गांव वाले कह। चलते चलते अगले गांव जाते समय रास्ते में एक घास फूस के बहुत बड़े ढेर इकट्ठा करके जानवरों के लिए बारिश से पहले इकट्ठा कर रहे थे, उसी के पास से निकलते समय घास का टुकड़ा उस महात्मा जी के सिर पर पड़ गया। एक दो फरलांग जाने के बाद पता चला मेरे सिर पर घास का टुकड़ा पड़ गया। अरे बोले ये भी तो करी गिरे, कहां से आया महात्मा जी वहां जो घास इकट्ठा कर रहे थे, वापिस दो फरलांग आकर और वहां डाल दिया उन्होंने, फिर चल पड़े। उन्होंने सोचा साहब कुछ भी परिगण नहीं है, धन्य मेरे गुरु करके वो बहुत बड़े प्रभावित हुआ थी। फिर अगले गांव जाने के बाद थोड़ा सा बड़ा कस्बा था, गांव के बाद धर्मशाला में बोली कि यहां तो पूछ नहीं, बड़ा कस्बा दिखाई दे रहा है। ये महाराज क्या डर की बात करते हो, ये लोग भैया पर लोग भैया आकस्मिक कुछ नहीं और कैसे कर रहे हैं। नहीं 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 पूछ, अच्छा भैया। उसको चिंता लग गई कि मामला क्या। इतने में जब महात्मा जी बहुत थके हुए नींद आ गई तो शिष्य को नींद नहीं आई चिंता के मारे, उसने महात्मा जी की लक्की बगल में लाठी थी उसको उठाया, बेच लगा उसको खोल के देखा यो यो घुमा के, तो उसमें से सोने के सिक्के निकल आए। उन्होंने वो सब उठा के कुएं में डाल के और उसमें कंकर भर के और बंद कर दिया और चल पड़े सवेरे अगले गांव भोजन करके। फिर शाम को एक गांव में आए ठहरे तो उन्होंने कहा कि इस गांव को तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है साहब, यहां तो जरूर भी देख लोगे या घूमने वाले लोग भी, किससे लगता है मुझे बहुत डर है यहां, पूछ क्या। बोले कोई अब पूछने की जरूरत नहीं। बोले क्यों। बोले डर पीछे गया कायम के लिए, अब तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा कैसे गया। बोले साहब गया तो वो रात को सोते समय शिष्य खूब निश्चिंतता से नींद लिया, पर महात्मा जी नींद नहीं इसलिए ले सके, इसने ऐसी बात कैसे कही। खोल के देखता है तो उसमें कंकर थे और उसमें से सोना गायब है। उन्होंने कहा इस लाठी को भी और कंकर को लेके क्या करो, तो उसको भी उन्होंने उठा के अपने त्याग दिया। तो महानुभाव तो ये जो श्रवण संस्कृति की एक विशेष बात है, ये चरम सीमा का त्याग की बात करता है। जब इसी को परिग्रह मान रहा है तो बात की तहना है। आचार्य ने यहां तक लिख दिया, जिस मोर पक्षी ने उस पंख का मोह छोड़ दिया, हे साधु तुम उस पंख पर मोह करे हो तो एक संयम का उपकरण हो। कमंडलू केवल शौचोपकरण नहीं है, वो तो हमें यह दिखाता जैसे कमंडलू का पानी और कमंडलू अलग है वैसे आत्मा और मैं अलग हूं, ये अकिंचन भाव हमेशा उसको याद दिलाने के लिए वो कमंडलू है। वास्तव में पानी अलग है और कमंडलू अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। इसी के अंदर जो चिंतन में निमग्न रहता है वही जो अकिंचन धर्म का परिपालन कर सकता है, दूसरा कोई अकिंचन धर्म का पालन नहीं कर सकता। भले ही कोई एक देश रूप में एक देश जिन कहा सम्यक दृष्टि जीवों के लिए, तो एक देश, अब वो एक देश क्या चीज है। एक देश में आचार्य ने जो लिखा अंधकार में भी घटा भी प्राप्त करते हैं, वैसे ही छद्मस्थ पुरुष योग ध्यान के द्वारा भी आत्म प्रतीति आभास एक देश निर्मल आत्मा को देखता है, एक देश ही देखता है। उत्तरोत्तर निर्मलता के पूर्ण जो है वो प्रत्यक्ष वो 13वें 14वें स्थान के वजह ये बात कही। तो महानुभाव यस्यास्ति मैंक्यं वपुषापि सार्धं तस्यास्ति किं पुत्र कलत्र मित्रैः प्रदक्कृते चरमणि रोमकूपात् कुतो हि तिष्ठन्ति शरीर मध्ये। जिस शरीर को हमने खूब खिलाया पिलाया उसाबिर नाना तरीके करते रहे, जब ये शरीर ही हमारा नहीं हुआ, ये पुत्र मित्र बंधु भाई महल मकान जमीन जायदाद ये दुनिया भर की चीजें हमारी कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। इसीलिए संसार की शुरुआत में पहले अध्याय में ही 20-21-22 गाथा में स्पष्ट कर दिया ये मेरा है, अगले जन्म में मेरा होगा, ये संबंध इत्यादि जो अज्ञान जीव जोड़ता है बोलते ये सबसे बड़ा मिथ्या तो है, इसलिए संयोग मात्र है इसका संबंध मेरे, इसलिए उसका मूर्छा बना जो है वो त्यागना सबसे बड़ी चीज गृहस्थों के लिए। उस मूर्छा को भैया रख रहे आप गृहस्थी है तो कोई बात नहीं, परंतु मूर्छा तो कम से कम छोड़ दे, मूर्छा छोड़ दे, अनाशक्ति योग। इसीलिए तो दर्शन पाठ के अंदर कहा सचिंतोपी दरिद्रोपी जिन घर में निवास होता है, भगवान मैं दरिद्र हूं चिंतातूर हो तो कोई बात नहीं, आपके चरण और वितरागता की भक्ति मेरे अटूट बनी रहे और मैं कुछ नहीं चाहता। क्या वो स्तुतिकार ने स्तुति की ये रचना की कि बोले सोच समझ के क्यों, बोले कोई बात नहीं है कि इस दुनिया के अंदर तो पुण्य पाप का खेल है, परिग्रह और निष्परिग्रह इत्यादि, और वह आता भी है और जाता भी है, 520 रियासत कहां चले गए, ब्रिटिशों का सूर्य अस्त नहीं होता था उनका परिवे कहां गया, कौरव पांडव भरत चक्रवर्ती आदि की संपत्ति कहां चली गई, आज माइक्रोस्कोप लगाकर हम उनकी परमाणु प्रमाण भी कोई परिग्रह को पता नहीं लगा सकते हैं, जमीन को खोदते जा रहे लोग, बोले कोई कुछ मिल जा तो ये मिल जा वो मिल जा तो महान भाव, ये शास्त्र अध्ययन की इसीलिए जरूरत है गृहस्थ अवस्था में आचार्य ने और प्रवचनसार में, और इसी प्रकार से छड़ाला ने ये बात कही कि भी आप कमल फूल कीचड़ में रहते हुए भी इस प्रकार से भी कोई गृहस्थी जीवन को व्यतीत करता है तो वह अकिंचन धर्म का कुछ देश एक देश कुछ पालन कर सकता है। यद्यपि अकिंचन धर्म का जो शुरुआत है वो चौतीसी होती है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव भी इस आत्मतत्व के नाना तरह की चर्चा करने के बाद भी उसका जब तक मिथ्यात्व नहीं हटता है तब तक इसका अकिंचन धर्म पालन नहीं हो सकता। आकिंचन धर्म जैसे कहते हैं कि भैया अंगूठी जो है वो हीरे की हीरा उसी में लगा जा सकता जो सफेद सोना होता है जिसको प्लेटिनम धातु कहते हैं, इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के अंदर ही यह आकिंचन धर्म में रखा जा सकता और परिपूर्ण पालन हो सकता है। इस आकिंचन धर्म के बारे में जो बात इसमें लिखी गई है रेधु कवि ने वो मैं पढ़ता हूं। आकिंचन भाव अपौजाओ देहु भिन्नो नानमो निर्वन मय वर्णौ स्व संपन्नो परम अतुंगी वियोगो आकिंचन संग्रह वित्ति आकिंचन वो सुहनान सत्ति आकिंचन वो विसलिय ममति आकिंचन रण तवित्ति तिलमित्त परिग्रजत्तनत्थि आकिंचन सोने मेन अत्थि अप्पा पर जप्त विहार शक्ति पैरी जदि जही परमति भक्ति जय छंदित जय संकल्प भोजन वंचित जय जय अनिद्युत। उत्तम किंचन भाव आत्मध्यान यथो न किंचित तथो न किंचित यथो यथो याम तथो न किंचित विचार पश्चात जगन्न किंचित स्वात्मा होगा। इसीलिए मनु महाराज ने भी आत्मानं सततम रक्षे की बात कही, तो आत्म ध्यान को छोड़कर किंचित मात्र भी आप एको शाश्वतस्यात्मा कुंद कुंदाचार्य मूलाचार में और इसी तरह से मेमसार में एको शाश्वतस्यात्मा नानो ज्ञान दर्शन उपयोग में, वो ज्ञान दर्शन में उपयोग के लिए राजवार्तिक में अकलंक देव ने पांचवें अध्याय और आठवें सूत्र का जो व्याख्या करते समय वार्तिका के 20वां 5, 8 और 20 उसमें लिखा ज्ञानोपयोग और जो दर्शनोपयोग है शुद्ध ने की अपेक्षा से वह अप्रदेश जैसे समय सार के अंदर 15वीं गाथा के अंदर अप्रदेश शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने कहा अप्रदेश कि बाकी सब अवस्था के अंदर संकोच विस्तार होता है, वो शुद्ध ने की आत्मा के अंदर कोई संकोच विस्तार से और समाप्ति है, उस संकोच विस्तार रहित जो शुद्ध उपयोग शुद्ध नहीं की अपेक्षा से जो उसका ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है वह अखंड है, ज्ञान भी अखंड है उसका आत्मा भी अखंड है। इस प्रकार से वो जो चिंतन है उसका वह आकिंचन धर्म को परिपालन का एक प्रारंभिक शुद्ध नहीं की दृष्टि अपनी, ये बात राजवार्तिक के अंदर 5 सूत्र 5वां अध्याय 8वें सूत्र और 20वें वार्तिका के उसके अंदर ही बताया। वह आत्म ज्ञान देह भिन्न है। मानवाओं देह और आत्मा इन दोनों के भेद विज्ञान जैसे तलवार और म्यान अलग है, कमल फूल और कीचड़ अलग है, इसी प्रकार से यह आत्मा और अनात्मा। और 188 गाथा के समय सार के अंदर कहा, नौ कर्म का ध्यान नहीं, द्रव्य कर्म का नहीं, भाव कर्म का नहीं, इनसे रहित जो चैतन्य आत्मा है उसी का मात्र जो जिसमें ज्ञान चेतना मात्र है वही अकिंचन्य धर्म है, बाकी सब जो है वह अकिंचन्य धर्म नहीं होता। एक अभ्यास की दशा है, वह आत्मनिर्भर गंध वर्ण रहित है, स्पर्श रहित है, इसीलिए स्पर्श रहित सिद्धाधिपति नमः। ये बात आपके जो सिद्ध पूजा के सिद्ध चक्र पाठ के अंदर आता है। और वह आत्मिक सुख से संपन्न है और इंद्रियों से अगोचर है और भय मुक्त है। ये आत्मा इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं है। भगवान समय समय में बैठे रहते हैं, उनका शरीर भी दिखाई देता है, वहां भी उनका आत्मा नहीं दिखाई देता है। छद्मस्त को उनका शरीर, उसी उनके शरीर से कि ये वितरागता झलकती रहती है उनके मुख मुद्रा में। ये अनुयोग द्वार के अंदर श्वेताम्बर ग्रंथ में लिखा है, बोले ये वितराग कैसे पहचाने, बोले कि प्रशांत रस वहां झलकते रहता है मुख पृष्ठ का। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया, ये दर्पण निर्मल है कैसे आपने समझ लिया और ये मलिन है कैसे समझ लिया। जैसे दर्पण को समझते हो इसी प्रकार से उस निर्मल शरीर के द्वारा वितरागता के अंदर है ये बात पता चल जाता है। नाक पर हाथ के बैठा हुआ है कोई आदमी तो चिंता का कारण है, काल पर बैठा है तो भी यह कोई चिंता का कारण है। वक्त्रम वक्त्रम हि मानसम, तो समय समय में भी भगवान के शरीर ही दिखाई देता, वह आत्मा नहीं दिखाई देता। और ये भय से मुक्त है अकिंचन्य धर्म। अकिंचन्य संग्रह निवर्तक है, वह तिल तुष मात्र भी संग्रह करने के भाव उत्पन्न होने ही नहीं देता। शुद्ध ध्यान की शक्ति का पुंज है अकिंचन्य धर्म, ममत्व का विगलित होने वाला अकिंचन्य। जहां ममत्व गलित हो गया वह अकिंचन्य धर्म है। और रत्नत्रय में जो प्रवृत्ति है आत्मानं सततं रक्षेत् जैसे कहा, वैसे आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सततमेव, सतत निरंतर जो आत्मा का रत्नत्रय का उसमें है। ये निवृत्ति प्रधान धर्म का वेल सारे कुंज आचार्य का भगवान की भक्ति प्रवृत्ति प्रधान है और उसके द्वारा अपने आत्मा के अंदर जो रत्नत्रय का चिंतन है वह निवृत्ति प्रधान भक्ति। क्यों? आपको प्राप्त करनी है रत्नत्रय की, वो तो प्राप्त कर चुके हैं। महावीर की जय, उनका क्या जय, उनका जय होना जय तो आपका होना है, तो इसलिए आपके अपने विजय के लिए करना है। आकिंचन में तृणमात्र परिग्रह है, तृणमात्र शब्द लगा, वास्तविक आकिंचन यही है जो तृणमात्र भी कहीं नहीं। आकिंचन आत्मा और पर का विचार की एक महान शक्ति, भेद विज्ञान कराने में केवल एक आकिंचन धर्म ही समर्थ है और बाकी कोई भी भेद विज्ञान नहीं करा सकता। सब भेद विज्ञान कराने में सब असफल है, केवल एक आकिंचन धर्म। जिसने आकिंचन धर्म को अवलोकन किया, अनुभव किया, प्रतीति कर ली, तो वही आकिंचन धर्म के और यथार्थ रूप से अपने अनुभूति कर सकता है। इसमें परमेश की भक्ति प्रकट होती है। साधु परमेश जी, उपाध्याय परमेश जी, आचार्य परमेश जी, अहम परमेश जी, परिसिद्ध परमेश जी, ये उत्तरोत्तर आकिंचन धर्म के हमें दर्शाने वाले मार्गदर्शक है। और बृहद देवी संग्रह में ये बात कही कि बोले कि हमारे अंतिम जो आदर्श है वो सिद्ध भगवान है अकिंचन्य धर्म के। वो ही हमारे लिए आदर्श होने के कारण सहायक शब्द कहा, यदि नहीं सहायक होते तो नमो सिद्धानम ये पंच प्रयोग मुष्टि केश में इसकी समान वो जो तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंद वाले क्यों बोलते, इसलिए वो हमारे आदर्श है अकिंचन्य धर्म। तो उत्तरोत्तर पूर्ण वहां केवल शुद्ध आत्मद्रव्य मात्र है और बाकी कोई नहीं है। तीसरे उन्होंने कहा कि परंपरा से इन पांचों परमेष्टियों को हमें देखते भी उन आकिंचन धर्म का अवलोकन करना चाहिए, जो उन्होंने परमेष्टि की भक्ति का ये स्पष्ट रूप से यहां ली। आकिंचन दुष्ट संकल्पों का त्याग हेतु है, जो मन के अंदर अनेक दुष्ट संकल्प विकल्प आते हैं उनसे मुक्त होने का केवल एक आकिंचन धर्म ही समर्थ है, बाकी कोई धर्म समर्थ नहीं है। मानभाव और इसी प्रकार से जो अनुद्दिष्ट भोजन है ये आकिंचन धर्म को भी ये करते हैं। उद्दिष्ट हो जाएगा बोले कि ये रुचकर है ये रुचकर है, तो ये गृहता बढ़ते हुए आत्मचिंतन नहीं होगा। और जब तक ये पांचों इंद्रियों से विरक्त नहीं होता तो कैसे, तो इसलिए सारे बुराइयों का भंडार रसने इंद्रिय है। जब रसना इंद्रिय के गाड़ियां शुरू हो जाती तो एक एक इंद्रिया प्रज्वलित होने लगती है, जैसे घी डाला जाता है अग्नि में तो वो प्रज्वलित होती है। इसलिए आचिंचन धर्म को परिपालन के लिए कोशिश और प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। बात यह है धर्मशास्त्र और इतर शास्त्र, इन सबसे परस्पर में विचित्र लीला ये संबंध है। मैं आपके सामने एक बात रखूं कि वैद्य के पास कोई गया, उन्होंने कहा साहब आपको तो कफ हो गया, वो कफ की बात करता हूं। और इसी प्रकार से ज्योतिषी के पास जाए साहब मैं तो यूं हो, उन्होंने कहा तुम्हें अमुक ग्रह सता रहा है इसलिए तुम परेशान है। और जब कोई बहुत ही कोई परेशानी सा चक्कर आने लगा और कोई होने लगा लेते रहे तो भैया ऐसे क्यों घबराहट हो रही, पता नहीं क्या हो रही है, बोले किसी ने कोई जरूर कर दिया है, चलो उस इसके मांत्रिक के पास चलो। भूत छुड़ाने वाला होता है वहां चलो। अभी एक जर्मन के अंदर और आपके ये आदिवासियों के इलाके में इधर जो संघपति के गांव है राजस्थान के अंदर बम्बई के प्रतापगढ़ के इलाके के अंदर गांव में जाकर और 3 साल वहां रहकर जर्मन के छात्रों ने और पाखंडी मूर्छा पर एक जर्मनी भाषा में किताब लिखी हुई एक प्रति मेरे पास भी भेजी थी, उसमें समंत बदर के भी वगैरह उन्होंने दृष्टांत वगैरह दी है, वो अंग्रेजी में भी छप रही है। तो पाखंड मूर्छा उसने चित्र भी दिए हैं कि बहुत कुछ कुछ हो गया बहू को, वहां ले गया और मोर के लंबे लंबे पंख लिया एक आदमी और घुंघरा भुंगरा कोई गले में बांधा है, विकराल रूप सब अपना क्या क्या सजा लिया है और बड़े जोर जोर से चिल्ला के, और तो फिर उसको कुछ ये हो गया, फिर उसने क्या कर दिया कि वहां मिर्च विरच का धुआं कर दिया तो वो जोर से चिल्लाने लगी और हिलने लगी, अभी जाओगे नहीं तुम वहां से, वो मिर्च के धुआं से वैसे कर रही हो और ये हिले पड़ी हुई लड़की उसको वहां ले गई, अब सास के वर्जी के कारण उसको जाना पड़ा और इस प्रकार से वो परेशान रही। तो जितना भूत इन लोगों को पकड़ता है, कल पाटो जी कह रहे थे उतना आपको नहीं पकड़ता है। तो सबसे बड़ा ये भूत जब तक नहीं छोड़ोगे तुम्हारा आकिंचन धर्म और ये पूजा पाठ मिथ्या को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम्हारा सारा निरर्थक। क्या भूत यही है, जापान में नहीं, अमेरिका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, सब कहां भाग गए, सब यही आ गए भारत में और इंदौर में आ गए। गजब की चीज है, इतना धर्म करते हैं, इतना धर्म पढ़ते हैं, इतने सब त्यागी व्रति आध्यात्मवादी और नाना तरह के विद्वान लोग नाना शास्त्र पढ़े और फिर मिथ्या को, तो इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वह सबसे बड़ा शनि ग्रह जो है वो कौन है, मिथ्या। सबसे बड़ा भूत कोई है बाबा तो ये है, सबसे बड़ा वातपित कब जो है वह मिथ्यात्व है। जब तक आप इस मिथ्यात्व से और मुक्त होने के लिए कोशिश नहीं करोगे तो आकिंचन धर्म तो समझ में नहीं आएगा और आकिंचन धर्म तो पालन करना तो वो तो अलग है कि इधर से सुना और इधर से कांसी छोड़ा, जैसे कि भैया सब सुन लिया पूरे के पूरे शास्त्र को बहुत आराम की तरह से और आखिर बलि साहब कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछो। एक मुनि महाराज जी तत्रनाश कर रहे थे, उन्हें पांचों इंद्रियों की चर्चा सबको बताई कि ये एक इंद्रिय को कहते, दो इंद्रिय को, तीन इंद्रिय को, चार इंद्रिय को सब बता दिया। उन्होंने कहने के बाद उन्हें पूछा कि साहब कोई शंका हो तो पूछ लो, तो उनका शंका उनका हमें कुछ नहीं, आप ही हमारी परीक्षा ले लो। तो मुनि महाराज जी ने कहा पांच इंद्रिय का लक्षण बताओ, बोले कि उन्होंने कहा कि हाथी पांच इंद्रिय होता है, तुम बताओ कि ऊंट कितने इंद्रिय होता है, उन्होंने कहा तीन इंद्रिय ऊंट होता है, और आदमी बोले आदमी एक इंद्रिय होता है। अरे वो 4 महीने तुम्हें पढ़ाया मैंने और तुम यही के यही हो अभी, तो ऐसे ही जो पूजा पाठ हर साल दक्षिण पूजा हर साल तीर्थ यात्रा रोज मिथ्याभिषेक पूजा ये सब करने के बाद ये मिथ्या आपके यदि आप नहीं छोड़ते हैं तो आकिंचन धर्म इधर से सुन के इधर छोड़ दीजिएगा आपके तो मान भाव। इसीलिए अंतिम आचार्य ने हमारे क्या कहा, वैद्य वदन्ति कपित्त मरुद्विकारान् ज्योतिर्विदो ग्रहगणं परिकल्पयन्ति भूतोपदृष्ट इति भूत विनयो वदंती प्राचीन कर्म बलवान मुनयो वदंती। जो वह वितराग तपस्वी है वो बोलते हैं भैया तुम्हारे जो धर्म कर्म और भाव कर्म है इन्हीं कर्मों के कारण तुझे सुख दुख का आभास हो रहा है, इंद्रियजन्य अन्य का कोई भूत उपग्रह या इस प्रकार से तुम्हारा जो और जितने भी वाद पित्त ये सब जो है इन कर्मों का मूल कारण ये सब आते हैं, मूल कर्म है ये सबसे बड़ी बात। ये सुप्रीम जजमेंट अंत ने दे दिया, सबने कहा एक 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 बातें उन्हें इकट्ठा करके बोले कि ये तुम्हारा मूल कारण है, तो इसलिए मान भाव कि अपरिग्रहवाद और ये अकिंचन निधर्म अकिंचन मिथ्या को छोड़ना ये सबसे बड़े पहली शर्त है इस धर्म के अंदर, और मिथ्या को नहीं छोड़ा तो उसने कुछ नहीं छोड़ा और मिथ्यात्व का कोई अंत नहीं। अग्रहित मिथ्यात्व तो छोड़ नहीं सकते हैं पर जो ग्रहित मिथ्यात्व है यदि उससे आप मुक्त हो गए तो मैं समझता हूं कि पहले आपने अध्यात्म तत्वज्ञान और धर्म के अंदर सीढ़ी में पहली सीढ़ी आपने पकड़ी, और ग्रहित मिथ्यात्व को पकड़ रखा है तो आप चाहिए धर्म करो तो ऊषर भूमि में और बीज बोने जैसा है और जल में होम करने जैसा है, आपका समस्त क्रियाकांड जो है निरर्थक है। जब हम देखते हैं कि भैया अच्छे से अच्छे धार्मिक लोग भी उस ग्रहित मिथ्यात्व की तरफ झुकते हैं तो आश्चर्य होता है कि अभी भी उनका कर्म बड़ा बलवान है, तो उस कर्म के सामने क्या कर सकते हैं। दूसरी बात, आप दस लक्षण पूजा में ये पढ़ते ही है, उत्तम आकिंचन गुण जानो परिग्रह चिंता दुख ही मानो, पांच तलक से तन में ताले चार लंगोटी की दुख भाले, भाले न समता सुख कवि नर विना मुनि मुद्रा धारे। आखिर अंतरंग और वीत बहिरंग परिग्रह से त्याग ऐसी वीतराग मुद्रा ही जो है वह आकिंचन धर्म को पालन करा सकते। आप इसके बारे में भी कहानी जानते फिर भी मैं बच्चों के लिए सुनाने जा रहा हूं, आप तो बड़े बड़े लोग हैं बहुत चाहने हैं, आपको क्या सुनाना है बच्चों। बात यह है एक जंगल में एक महात्मा जी समस्त परिग्रह को छोड़ के ही निवास करते थे। आप तो जानते कि भी एक फांसा लग जाए तो उसको परेशानी होती है तो परिग्रह का दुख का कोई अंत तो वर्णन कर नहीं सकते। तब उन्हीं महाराज जी के गांव में आने से कुछ पंच लोग इकट्ठा हुए, महाराज जी हमारे गांव में ये है वो है अमुक है तमुक है और कुछ ने हमारी ये प्रार्थना है, भाई छोटी सी एक लंगोटी आप पहन लेगा और कोई बात नहीं है, भक्तों के और भगवान वश होता आप लोग कहते हैं तो भगवान जो है भक्तों के वश नहीं होता है, ये मिथ्या बात है, तो क्यों किसी होगा। परंतु उनके आग्रह में आके उन्होंने लंगोटी पहनी, साहब आप दूसरी अब धोना है कल दूसरी चाहिए तो दूसरे एक लाके दिया, एक रोज सुखारा एक दिन चूहे ने काट खाया, एक रूपक है ये। चाचा साहब चोपड़े ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छे इस पर कहानी लिखी है आचार्य शांत साहब महाराज जी की जीवन चरित्र के अंदर मराठी में। और फिर आखिर साहब चूहे ने काट खाया तो इसलिए उन्होंने चूहे नहीं आ जाए यहां सब भाग जाए, 12 योजन तक कोई चूहा नहीं रहे ऐसे एक बिल्ली पकड़ के ले आया। कितने योजन तक? 12 योजन तक कोई नहीं रहे ऐसे एक बिल्ली पकड़ के लाके रखा, साहब वहां कोई चूहे नहीं पर वो बिल्ली भूखी मर रहेगी इसलिए उन्होंने उसके लिए गाय खरीदनी पड़ी दूध के लिए। अब गाय को कोई पालन पोषण भी करे तो इसलिए पुरुष को कहीं पकड़ना पड़ा, उसको रोटी बनाने के लिए उसकी शादी करनी पड़ी, और वो आराम से रहे तो गाय को और उनको पेट के लिए कुछ चाहिए तो इसलिए कोई एक पाठू दी जैसे बहुत बड़े दान वाले आदमी थे 5 एकड़ जमीन उन्होंने दान कर दिया कि साहब ये ले लो, तो साहब उन्होंने जो है जमीन ले लिया और आराम से रहे। एक दिन गाय किसी के कोर्ट में अपने इसमें बाढ़ कूद कर और फसल को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने कोर्ट में कि इसके साहब किसके ये अमुक अमुक तुम्हार कोर्ट वाले वहां पहुंच गए और आके बैठे हुए साहब महाराज जी और ये बात पूछने इतने क्या और कोई बात नहीं कि या हो गई। देखो जैसे साहब मैं तो ज्यादा बोलता नहीं, हम महाव्रती और बस भोला भाला जैसे धर्म राजा और वो जुए में फंस के और धर्म राजा और अर्जुन की पत्नी को उन्होंने दाव दे रखी, बोली यही मेरी हालात हो गई है और बोली कि आप सजा दे दी इस लंगोटी के सारा कारोबार इसने कर रखा है का। मैं तो जा रहा हूं और इसको आप सजा दे दो वो फेंक के और वहां से चलेगी। दूसरे पंच मंदिर में ऐसी बच्चे ने बच्चों के लिए कहानी कही है, बहुत आग्रह किया, आग्रह करने के बाद एक देवी था उसको किसी ज्योतिषी ने बताया कि तू किसी दिगंबर मुनियों को पिटाई करो तो तू धनवान हो जाएगा। तो बोले कि साहब हम तो जहाँ नहीं मिलता वहां हार लेते हैं। बोली बहुत आग्रह करूंगे कि मेरे घर पैर तो लगने दे भैया, हम व्यर्थ में किसी के घर नहीं जाते, हमें तो प्रायश्चित है। तो क्या करें साहब, कोई बीमार हो, कोई अमुक हो, कोई संलेख ना हो, कोई किसी बात से जा तो कोई कारण नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको शास्त्र बांधने के लिए एक वस्त्र देना चाह रहा हूं, कि शास्त्रों में कहा है कि भी शास्त्र वेस्टर्न ले सकते हैं। तो श्रुत पहुड़ेंगे तो पहुड़ शब्द का उपहार है, तो यही लाके दे देने लेने साहब पैर लगेंगे। अच्छा भैया गए हैं, और जाने के बाद वहां उन्होंने बंद करके पिटाई शुरू कर दी। इतने में इधर हो हल्ला हुआ, क्या भैया दरवाजे क्यों बंद किया, लोग इकट्ठा हुए, केस चला, जज बैठे। तो उन्होंने देखा साहब महाराज जी क्या हुआ कैसे हुआ। उन्होंने कहा साहब ये जो ये कपड़ा है ये शास्त्र का वेस्टर्न, बस इसी का सारा नतीजा है कि जो पिटाई हुई हमारी। तुमने कैसे मारा साहब, मुझे किसी ज्योतिषी ने बताया इनको पीटो तो तुम्हें धनवान हो जाओगे। तो अकिंचन धर्म के बारे में उस पंचतंत्र में कहानी में लिखा है, जिसने सारे अंतरंग बहिरंग छोड़ दिया, लंगोटी भी और एक छोटे से और उस किंचित उस वस्त्र के और इच्छा को लेके और उसके यहां गए, तो ये दुख भोगना पड़ा। और इतने बड़े सारे परिक्रम में डूबे हुए लोग कैसे अकिंचन धर्म पालन करेंगे, मुझे बहुत मुश्किल लगता है इसे। वो उसने जजमेंट दिया, मैं नहीं जजमेंट दे रहा हूं, वो जो पंचतंत्र की बात बताई। तो इसलिए महानुभाव कि हम जितना भी हो सके अपने परिक्रम का, आज अच्छा दिन है कि आप संकल्प करो कि साहब हम इतना परिग्रह रखेंगे, इससे अधिक नहीं रखेंगे। क्यों कि ये पंचम काल के अंत में उस साधु का पहले ग्रास में भी टैक्स लगेगा, ये अभी से चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। नाना तरीके सुपर टैक्स, सेल टैक्स, वो टैक्स, एक मिनट शांति से रोटी नहीं खा सकता, इसे टैक्स लगती चली जा रहा है। वो कहीं भी बैठ नहीं सके, बोले आज इनकम टैक्स ऑफिस गए, आप ये कोर्ट में चला गया, आज ये हो गया, आज छापा पड़ गया, दुनिया भर के ये सब लक्षण दिखाई दे रहे। तब भी आदमी उस अकिंचन धर्म को समझ नहीं पा रहा है, तो इसलिए अकिंचन धर्म को जीवन में थोड़ा थोड़ा नहीं उतारने के बाद ही संभव है। इसलिए आप सादगी जीवन बिताना और इसी प्रकार से इस अकिंचन धर्म को पालन करने के लिए मैं आज संक्षिप्त में एक ही बात कहूं कि मनुष्य भाव मिलना बहुत दुर्लभ है। भव्य होना, आर्य क्षेत्र और सारे साधन, अंगोपांग अच्छे, समझे ना। गूंगा साहब, गूंगा आदमी कह रहा साहब मैं भगवान का भजन करता तो नहीं, सूर्यदास कह रहा साहब मैं आंख होते तो मैं बहुत शास्त्र पढ़ता कह रहा है, बहरा कह रहा साहब क्या कहे हम भगवान के भजन कीर्तन में कहीं जाके अकिंचन धर्म को सुनते, परंतु वो नहीं, एक एक इंद्रियों के कमी के कारण वह दुखी है। जिनके पांचों इंद्रिय स्वस्थ हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और इतने सब साधन हो, आर्य क्षेत्र हो तो और फिर भी धर्म ध्यान नहीं करता है, तो दुर्भाग्य उसका अनंत संसार अभी बढ़ने वाला है, अन्यथा कोई कारण नहीं हो सकता। आचार्य ने इस प्रकार से वादी सिंह ने अपने ग्रंथ के अंदर उत्तर उत्तर इसकी दुर्लभता की बात उन्होंने कही है। वह क्या कहते हैं, भगवत्तम कर्म भूम जन्म मानुष्यम संग वश्यताम दुर्लभम ते कर्मात्मा समवायस्तु तुम पुनः। भव्य होना, कर्म भूमि जन्म प्राप्त करना, मनुष्य पर्याय मिलना, अच्छे अंगोपांग तथा उत्तम कुल मिलना, प्राप्ति, ये एक एक उत्तर उत्तर दुर्लभ है और समस्त प्राप्ति हो तब कहना ही क्या। अर्थात सर्वप्रथम भव्य होना कठिन है, भव्य हो तो कर्म भूमि प्राप्त नहीं हो, तो भव्य हो तो कहीं नागालैंड में, नागालैंड में शादी नागा लोग करते हैं, बोलते किसी प्राणी को मार के और खून ला के उसको अभिषेक कराओ और तब वो शादी उसकी होती है, दोनों की नहीं तो शादी नहीं हो सकती। धर्म युग के अंदर विस्तार से लेकर आया था उस पर कि वहां आदमी गया अध्ययन करने के लिए, इनकी कैसे शादी होते हैं, इस अज्ञानता को लेकर वहां बैठे हुए। कर्म भूमि की प्राप्ति दुर्लभ, यदि भव्य और कर्म भूमि दोनों भी मिल गए पर मनुष्य पर्याय मिले ये भी तो दुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय भी मिल जा अंगोपांग मिलना दुष्प्राप्त है, और ये भी मिल जा तो धर्म भावना होना बहुत मुश्किल है, और धर्म भावना भी हो जाए तो अकिंचन धर्म को आत्म पुरुषार्थ के साथ उसको पालन करना भी कठिन है। तो इसलिए महानुभाव ये उत्तर उत्तर दुर्लभता के इन बातों को देखते हुए और बाकी धन कनक अंचन राजसुख सभी ही सुलभ कर जा, दुर्लभ है संसार में ये कथा। जिसने इस अकिंचन धर्म को समझ लिया उसने यथार्थ ज्ञान को समझ लिया, जिसने अकिंचन धर्म को नहीं समझा उसने यथार्थ धर्म को नहीं समझा। इसको समझेगा तो वह मूर्छा से कम मुक्त होगा, क्योंकि मूर्छा सबसे बड़े दुखदाई है। इतना संक्षिप्त में कहकर आज का मैं समाप्त करता हूं।
और बाल वर्ष के लिए खूब बच्चों को भी
नमो नमो अरहंतानम नमो नमो सिद्धानम नमो नमो ऐरियाणम नमो नमो उवजायानम नमो सयसाहुण नमो नमो अहंतानम नमो नमो अरहंतानम नमो नमो सिद्धानम नमो नमो ऐरियाणम नमो नमो उवजायानम नमो सर्वसाहूण नमो नमो अरहंतानम जीवहिंसा परमो धर्म की
Oh, Thank you.